आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है।
क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल 5 में से एक वयस्क मछली पकड़ने यानी फिशिंग के लिए जाता है, चाहे वो नदी का किनारा हो, किसी बीच पर हो या नाव से मछली पकड़ना हो। मछली पकड़ना सिर्फ एक शौक नहीं है, ये संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन कई नए प्रवासी ये नहीं समझते कि ऑस्ट्रेलिया में मछली पकड़ने के अपने नियम हैं और वो मायने रखते हैं। आपके राज्य या इलाके के आधार पर मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं, प्रतिबंधित क्षेत्र कौन सा है, बंद मौसम, साइज और लुप्तप्राय प्रजातियों जैसी चीज़ों के लिए अलग अलग कानून होते हैं, सुरक्षा, कचरे को निपटाना और मछली के बारे में भी नियम हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस अंश में इसी सब पर चर्चा और SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार। ऐसी दुनिया में जहाँ हम अपना अधिकतर समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं, ये एक ताजगी देने वाली बात है और शायद थोड़ी हैरानी की भी कि मछली पकड़ने का शौक बना हुआ है और पिछले 20 सालों में ये और भी मजबूत हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सरकार की 2023 की पब्लिश हुई एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि हर साल लगभग 4.2 मिलियन लोग मछली पकड़ने जाते हैं। फिशरीज साइंटिस्ट एंडी मूर ने हाल ही में मनोरंजन के लिए मछली पकड़ने वालों का नेशनल सर्वे किया। उन्होंने बताया कि भले ही 2 दशकों में नंबर तो अधिक नहीं बदला, लेकिन उसके पीछे की कहानी बदल गई है। ऑस्ट्रेलिया की जनसांख्यिकी का चेहरा बदल रहा है और अधिक सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध समुदाय इसको यानी फिशिंग को अपना रहे हैं।
We're seeing a really diverse group of Australians participate in recreational fishing. In some cases, a lot of that's traditional. They've got multiple generations of people doing that activity. And so when they come to Australia, they just continue to do that. We have a large economic exclusion zone where fishing can occur, the third largest in the world. So we have lots of access. We have lots of coastline. We have lots of rivers. And fishing seems to be a really popular activity. And it seems to be part of Australian culture.
Istan Konstan Daras, New South Wales ke Recreation Fishing Alliance ke president hain. ये राज्य भर में स्पोर्ट फिशिंग, फ्रेश वाटर फिशिंग, स्पीयर फिशिंग और एंग्लर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली मेंबर एसोसिएशन की एक बड़ी टॉप बॉडी है। वो कहते हैं कि हर इलाके के अपने नियम होते हैं, बैग और साइज लिमिट से लेकर आप किस तरह के गियर्स इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ तक। वो बताते हैं कि ये अंतर कितने मायने रखते हैं।
Every state is different and there are different rules around salt and fresh water. Every state has got different species, have also got different threatened species. Every state has also got different rules around the tackle you can use, the number of rods you can have out, the number of hooks. Some states prohibit the use of certain baits.
मछली पकड़ने के नियम ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं और अधिकतर राज्यों में आप ट्रांसलेट किए गए ऑफिशियल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो अपने आसपास के मछली पकड़ने के सामान की दुकान पर जाना आपके लिए सबसे अच्छा पहला कदम हो सकता है। कॉन्स्टान दारस बताते हैं कि लोकल टैकल शॉप एक स्टोर से अधिक सलाह और सुरक्षा के लिए एक कम्युनिटी हब है।
Whether you come from a non-English speaking background, you're a customer to them. And they are always engaging. And the people at the local tackle shops are a really good source of information. They're patient. They're mostly fishermen as well. So, yeah, we have got diverse rules around Australia. Definitely make the effort to go and find out.
अब बात आती है लाइसेंस के। साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी जैसे कुछ राज्यों में आपको इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरों में ये सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं। बस याद रखें कि सरकारी वेबसाइट से ही लाइसेंस खरीदें। विक्टोरियन फिशरीज अथॉरिटी के CEO ट्रेविस डाउनिंग थर्ड पार्टी स्कैम के बारे में चेतावनी देते हैं जो अधिक पैसे लेते हैं।
It's really easy to get a fishing license in Victoria. It's about $36 for the year, but I have to give a warning. There are a number of sites that you get onto when you Google a fisheries license. So they're third parties charging $90 to $100. And a lot of these are overseas companies. And you will get a fishing license, but you'll pay three times what you should pay. It's a bit of a scam. And they make the sites look very much like it's a legitimate government site. So use your mobile phone, jump onto the fisheries authority, and it'll be really easy to do.
अधिकतर लोग जो नियम तोड़ते हैं वो ऐसा जानबूझ के नहीं करते, अक्सर ये गलती से होता है. इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपने इक्विपमेंट को दोबारा चेक करें और समझें कि क्या नियम हैं. डाउनिंग कहते हैं कि उदाहरण के लिए ये पक्का करना आवश्यक है कि आपके मछली पकड़ने के इक्विपमेंट स्थानीय नियमों के हिसाब से हों. लेकिन मछली पकड़ना बिना खतरे के नहीं है. रॉक फिशिंग ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक शौकों में से एक रहा है. पिछले दो दशकों में 240 से अधिक डूबने से मृत्यु हुई हैं और इनमें से कई माइग्रेंट बैकग्राउंड के थे. कॉन्स्टेंट दारस बताते हैं कि लाइफ जैकेट पहनना बहुत आवश्यक और जान बचाने वाला है. साथ ही वो चेतावनी देते हैं कि अगर लहरें खतरनाक लगें तो बेहतर है कि रिस्क बिल्कुल भी ना लिया जाए.
Like if you really need to put a life jacket on because the seas are that big that you might get washed in, like you shouldn't be fishing there. It's a message we've been pushing for a very long time. If it's too rough, go home. Simple as that.
तो यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर एंगलर को याद रखनी चाहिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी मछली पकड़ते हों, जिम्मेदार और सम्मानजनक बने. डाउनिंग बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे काम जैसे मछलियों को ध्यान से संभालना, पीछे कोई कचरा ना छोड़ना, ये पर्यावरण और भविष्य की मछली पकड़ने की यात्राओं दोनों को बचाने में मदद करते हैं.
ये एक SBS ऑडियो पॉडकास्ट था. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के और दूसरे पॉडकास्ट के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं.